एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागतम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के विचारों पर बात करने वाले हैं, डी स्टीफन लॉन्ग की क्रिश्चियन एथिक्स।
बिल्कुल। और देखिए, जैसे ही हम कहते हैं ईसाई नैतिकता, है ना, तो कई लोगों के दिमाग में शायद बस नियमों की एक लिस्ट आ जाती है, ये करो वो मत करो।
हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है।
पर क्या ये सच में बस इतना ही है? आज की दुनिया में जहाँ सही गलत पर इतने अलग अलग विचार हैं, ये समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि ईसाई नैतिकता की अपनी खासियत क्या है।
सही कहा। और लॉन्ग अपनी किताब में यही तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि इसे अक्सर, मतलब, या तो बहुत आसान समझ लिया जाता है, भाई कुछ नियम है, या फिर इसे धर्म निरपेक्ष सोच का ही एक हिस्सा मान लिया जाता है।
अच्छा।
वो कोशिश करते हैं इसे वापस इसकी जड़ों से जोड़ने की, मतलब ईसाई धर्म की जो गहरी सोच है, जो मान्यताएं हैं, उनसे। और ये आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नैतिकता पर बहस तो हम सब करते हैं, पर उसकी बुनियाद क्या हो, ये सवाल अक्सर रह जाता है।
तो चलिए फिर इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताइए, ये डी स्टीफन लॉन्ग है कौन? मतलब क्या खास है उनमें जो वो इस विषय पर लिख रहे हैं?
हाँ, तो डी स्टीफन लॉन्ग, वो अमेरिका के काफी माने हुए धर्मशास्त्री और नीतिशास्त्री हैं। सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ड्यूक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं।
अच्छा।
उनकी खासियत यह है कि वो, आप कह सकते हैं, तीन अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ लेकर चलते हैं। एक तो धर्म के सिद्धांत, जिसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, दूसरा नैतिकता के सवाल यानि एथिक्स, और तीसरा राजनीति के विचार, पोलिटिकल थ्योरी।
अरे वाह, मतलब सिर्फ नैतिक नियम नहीं बल्कि उनके पीछे का पूरा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचा वो सब समझते हैं। ये तो काफी अलग नजरिया हुआ।
हाँ बिल्कुल। और उनकी जो मेथोडिस्ट पृष्ठभूमि है ना, उसका भी असर है। वो ईश्वर की कृपा यानी ग्रेस और पवित्र बनने की प्रक्रिया, जिसे सैंटिफिकेशन कहते हैं, और सबसे जरूरी अच्छे चरित्र या सद्गुण, वर्चू, इन पर बहुत जोर देते हैं।
चरित्र पर जोर नियमों से ज्यादा।
हाँ, उनके लिए बड़ा सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि यह है कि मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए। वो पुराने ईसाई विचारों को, जैसे ऑगस्टीन या एक्विनास को, आज के सवालों से जोड़ते हैं। लिखते बहुत एकेडमिक ढंग से हैं, पर भाषा सीधी और साफ है, और हाँ, कभी कभी थोड़ी बहस छेड़ने वाली भी।
दिलचस्प। तो फिर इस किताब का कह सकते हैं दिल क्या है? लॉन्ग का मुख्य संदेश क्या देना चाहते हैं?
देखिए, किताब का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि ईसाई नैतिकता को आप ईसाई धर्मशास्त्र और चर्च के जीवन से अलग करके नहीं देख सकते। ये कोई, मतलब, फिलॉसफी की ब्रांच नहीं है, या कोई ऐसा नैतिक कोड नहीं है जो हर किसी पर बस लागू हो जाए।
अच्छा।
की आलोचना करते हैं कि आजकल अक्सर ईसाई नैतिकता को उसकी धार्मिक जड़ों से, उसके धर्मशास्त्रीय स्रोत से काट दिया गया है।
तो आप कह रही हैं कि लॉन्ग के मुताबिक जो चीज ईसाई नैतिकता को ईसाई बनाती है वो नियमों की लिस्ट नहीं बल्कि वो ईश्वर की कहानी है जो बाइबल में मिलती है। ईश्वर का काम, यीशु मसीह का जीवन, वो सब नैतिकता वहां से निकलती है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये नैतिकता सिर्फ तर्क से सच ढूंढने के बारे में उतनी नहीं है, ये ज्यादा चरित्र निर्माण के बारे में है। सद्गुण कैसे विकसित हों ताकि व्यक्ति, मतलब, ईश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में जी सके। लॉन्ग इसे एक तरह की इम्प्रोवाइजेशनल कला जैसा बताते हैं, जैसे कोई संगीतकार राग को अच्छी तरह जानता है, फिर उस पर अपनी तान छिड़ता है ना?
बिल्कुल।
वैसे ही ईसाई कहानी में गहराई से उतर कर, चर्च समुदाय के साथ मिलकर इसे जीना होता है।
और लॉन्ग इस किताब से किस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं? आज के समय में क्या जरूरत महसूस हुई उन्हें?
वो उस खालीपन को देख रहे हैं जहां ईसाई नैतिकता या तो बस आम अच्छे मूल्यों का एक समूह बन गई है जिसमें कुछ खास ईसाई बचा नहीं, या फिर वो नियमों का एक कठोर ढांचा बन गई है जिसमें ईश्वर की बदलने वाली शक्ति, उसकी कृपा, उसका कोई स्थान नहीं।
अच्छा, तो दो छोर हैं।
हाँ, तो किताब पहले आधुनिक नैतिक विचारों, जैसे कांट के नियम या मिल के नतीजों वाले विचारों की कमियों को सामने रखती है, फिर वो ईसाई नैतिकता को उसकी असली बुनियाद पर फिर से खड़ा करती है। और वो बुनियाद क्या है? बाइबल, चर्च की परंपरा और विश्वास से प्रकाशित तर्क।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं।
शुरुआत कहाँ से होती है?
शुरुआत में लॉन्ग आधुनिक नैतिकता की जो धारणा है उसी पर सवाल उठाते हैं जो ज्ञानोदय, इनलाइटनमेंट के समय उभरी थी। कोशिश थी कि धर्म से आजाद सिर्फ तर्क पर आधारित नैतिकता बने।
हाँ, वो तो है। लॉन्ग कहते हैं ये काफी नहीं है। कांट के नियम हों या मिल के परिणाम, ये ईसाई नजरिए से अधूरे हैं। उनका मुख्य तर्क यही है। ईसाई नैतिकता दुनिया भर के नैतिकताओं में से एक और विकल्प नहीं है, ये ईसाई धर्म सिद्धांत का हिस्सा है। इसकी जड़ें यीशु मसीह में हैं, किसी फिलॉसफी में नहीं।
तो फिर स्रोत क्या है? अगर सिर्फ तर्क नहीं तो क्या? बाइबल के बारे में क्या कहती है किताब? कैसे इस्तेमाल करें उसे?
हाँ, बाइबल ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन लॉन्ग इसके गलत इस्तेमाल से सावधान करते हैं। जैसे अपनी बात सही साबित करने के लिए कहीं से भी कोई आयत उठा लेना, जिसे प्रूफ टेक्स्टिंग कहते हैं।
हाँ, वो तो होता है।
या फिर बाइबल को हर छोटी बड़ी बात के लिए एक नियम पुस्तिका मान लेना। लॉन्ग कहते हैं बाइबल का असल काम नियम देना नहीं, बल्कि हमारी नैतिक कल्पना को जगाना है, उसे आकार देना है।
नैतिक कल्पना, ये क्या है?
मतलब ये हमें एक बड़ी कहानी मिले जाती है, सृष्टि, इंसान का पतन, ईश्वर का छुटकारा और अंत में सब कुछ ठीक होना। इस कहानी में जीने से हमारा चरित्र बनता है। मकसद सिर्फ नियम खोजना नहीं, बल्कि कहानी में इतना डूब जाना है कि नई चुनौतियों का सामना करते हुए हम ईमानदारी से सही रास्ता चुन सकें।
ये तो बाइबल को देखने का बहुत ही अलग और कहूं तो जीवंत तरीका है। नियम पुस्तिका नहीं, चरित्र बनाने वाली कहानी। अच्छा, और दूसरा स्रोत आपने कहा था परंपरा, ट्रेडिशन। इसका क्या मतलब है? पुरानी रीतियां?
नहीं नहीं, परंपरा का मतलब यहां रूढ़िवाद बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग कहते हैं कि बाइबल को कभी अकेले नहीं पढ़ा गया, इसे हमेशा चर्च के जीते जागते समुदाय के अंदर समझा गया, जिया गया। परंपरा मतलब सदियों की व्याख्या, बहस, अनुभव।
अच्छा।
इसमें चर्च के शुरुआती विचारक हैं, मध्ययुग के लोग हैं, सुधारक हैं। ये परंपरा हमें बाइबल को सही ढंग से समझने में मदद करती है, उसे सिर्फ अपनी निजी राय बनने से रोकती है, हमें पिछली पीढ़ियों की समझ से जोड़ती है।
ठीक है, तो बाइबल और परंपरा, अब कुछ और गहरे धार्मिक विचारों पे आते हैं। आपने कृपा और प्रकृति के रिश्ते की बात की थी, ग्रेस एंड नेचर। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, इसे सरल शब्दों में कैसे समझाएंगे?
हाँ, ये बहुत जरूरी है और थोड़ा जटिल लग सकता है। लॉन्ग एक क्लासिक ईसाई विचार सामने रखते हैं जो थॉमस एक्विनस जैसे विचारक से जुड़ा है। कृपा प्रकृति को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे पूर्ण करती है।
इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है कि इंसान को मूल रूप से अच्छा बनाया गया था, ये हुई प्रकृति। पाप ने इस अच्छाई को मिटाया नहीं, बस घायल कर दिया, बिगाड़ दिया। अब कृपा यानी ग्रेस वो ईश्वर का तोहफा है जो उस घाव को भरता है, हमें सुधारता है, हमें हमारे असली मकसद ईश्वर के साथ रिश्ते की तरफ ले जाता है।
अच्छा,
तो इसलिए ईसाई नैतिकता का मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है, ईश्वर की ओर मोड़ना है। ये एक तरह से इलाज है, बेहतरी की प्रक्रिया है, सजा नहीं।
वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है, दमन नहीं बल्कि पूर्णता की ओर जाना।
बिल्कुल,
और शायद इसी से सद्गुण, वर्चू का विचार जुड़ता है।
बिल्कुल, अगर नैतिकता का लक्ष्य इंसान को पूरा करना है तो जोर सिर्फ बाहरी कामों पर नहीं बल्कि अंदरूनी चरित्र पर होना चाहिए। मुख्य सवाल बदल जाता है, मुझे क्या करना चाहिए से ज्यादा जरूरी हो जाता है मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए। यहाँ लॉन्ग चार बुनियादी सद्गुणों, समझदारी, न्याय, हिम्मत, संयम, और तीन खास ईसाई सद्गुणों, विश्वास, आशा और प्रेम, जिसे चैरिटी या अगापे कहते हैं, ये सीधे ईश्वर की कृपा से मिलते हैं और यही ईसाई नैतिकता को खास बनाते हैं।
ये सिर्फ अच्छा इंसान बनने से अलग है।
हाँ, ये ईश्वर के साथ रिश्ते पर आधारित है, ये सिर्फ दुनियावी अच्छाई नहीं है।
और ये सब चरित्र निर्माण, ये सद्गुण सीखना, ये होता कहाँ है? क्या ये अकेले में बैठकर ध्यान करने जैसी चीज है?
यही लॉन्ग आज की जो व्यक्तिवादी सोच है ना, उसे चुनौती देते हैं। वो साफ कहते हैं नहीं, ये अकेले का काम नहीं है। सद्गुण आप अकेले में नहीं सीख सकते, ये सिर्फ समुदाय में ही सीखे जाते हैं, जिए जाते हैं, मजबूत होते हैं।
किस समुदाय में?
और वो खास समुदाय है चर्च। चर्च सिर्फ मतलब रविवार को मिलने की जगह नहीं, लॉन्ग के अनुसार ये अपने आप में एक अनोखा सामाजिक और नैतिक समुदाय है, एक पॉलिस जिसकी अपनी कहानी है, बाइबल, अपना शासक है मसीह, और अपनी खास रीतियां हैं, प्रार्थना, बपतिस्मा, प्रभु भोज। इन सब में हिस्सा लेने से ही ईसाई चरित्र बनता है। चर्च एक तरह से सद्गुणों का स्कूल है।
ये तो बहुत मजबूत दावा है, खासकर आज के जमाने में जहां लोग संस्थाओं से ज्यादा व्यक्तिगत आध्यात्मिकता की बात करते हैं। खैर, अब किताब के आखिरी हिस्से पर आते हैं। लॉन्ग इन सब विचारों को रोजमर्रा के मुश्किल मुद्दों पर कैसे लागू करते हैं, जैसे राजनीति, सेक्स, पैसा?
हाँ, आखिर में लॉन्ग दिखाते हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जैसे राजनीति को लें, वो कहते हैं चर्च का पहला काम सरकार बदलना या किसी पार्टी से जुड़ना नहीं है, बल्कि खुद चर्च बनकर दिखाना है। एक ऐसा समुदाय बनना जो ईश्वर के शांतिपूर्ण राज्य की गवाही दे। ये दुनिया के राष्ट्रवाद और हिंसा के तरीकों से अलग है।
और सेक्स के बारे में?
सेक्स के मामले में वो इसे सिर्फ शारीरिक जरूरत नहीं मानते, बल्कि सृष्टि की अच्छाई, वायदे, वफादारी के धार्मिक संदर्भ में देखते हैं, विवाह को मसीह और चर्च के प्रेम के प्रतीक के रूप में। तो नैतिकता का फोकस नियमों से हटकर प्यार और वफादारी पर आ जाता है।
और पैसे के बारे में? आज का बड़ा मुद्दा है ये।
हाँ, पैसे को लेकर वो धन, गरीबी, न्याय पर ईसाई शिक्षाओं के आधार पर आज के पूंजीवाद की आलोचना करते हैं। तर्क ये है कि संपत्ति असल में हमारी नहीं, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, जिसे पूरे समुदाय, खासकर जरूरतमंदों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ वो लालच के पाप और उदारता या दान के सद्गुण पर बहुत जोर देते हैं। लक्ष्य सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाना नहीं, बल्कि समुदाय का भला और सबके लिए न्याय होना चाहिए।
इस पूरी बातचीत को अगर समेटना चाहें तो कुछ मुख्य बातें क्या होंगी जो खासतौर पर याद रखी जानी चाहिए?
पहली और शायद सबसे बुनियादी बात, ईसाई नैतिकता और ईसाई धर्मशास्त्र अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जो करते हैं वो सीधे तौर पर उससे जुड़ा है जिसमें आप विश्वास करते हैं। कर्म और विश्वास साथ साथ चलते हैं।
दूसरी बात जो मुझे लगी वो ये कि लॉन्ग उस आधुनिक सोच को चुनौती देते हैं जो धर्म या परंपरा से आज़ाद सिर्फ इंसानी तर्क पर नैतिकता बनाना चाहती थी। वो कांट या मिल के विचारों को सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक तरह से वैकल्पिक धार्मिक व्यवस्था मानते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, इनकी अपनी मान्यताएं और सीमाएं हैं। तीसरा, चर्च या ईसाई समुदाय की केंद्रीय भूमिका। नैतिक जीवन अकेले की यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक प्रोजेक्ट है। सद्गुण समुदाय में ही सीखे और जिए जाते हैं, ये आज के व्यक्तिवादी दौर के लिए एक बहुत जरूरी बात है।
और चौथा, जोर नियमों या नतीजों पर नहीं बल्कि चरित्र और सद्गुणों पर है। लक्ष्य सिर्फ सही काम करना नहीं बल्कि एक खास तरह का इंसान बनना है।
सही। और पांचवा, बाइबल को नियमों की किताब नहीं बल्कि एक जीवंत कहानी की तरह देखना जो हमारी सोच और कल्पना को दिशा देती है। और हाँ, वो कृपा प्रकृति को पूर्ण करती है वाला विचार कि नैतिकता दमन नहीं बल्कि सुधार और बेहतरी है, ये भी बहुत अहम है।
यकीनन, किताब में कई ऐसी पंक्तियां या विचार होंगे जो दिमाग में रह जाते हैं, कुछ ऐसे खास कथन जो इस पूरी सोच का निचोड़ हों।
हाँ, कुछ विचार हैं जो बार बार आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला ये कि ईसाई नैतिकता दुनिया की नैतिकताओं में एक और विकल्प भर नहीं है, ये तो एक ऐसी समझ है जो सिर्फ ईसाई धर्म की मान्यताओं और व्यवहारों के अंदर ही समझ में आती है, ये फिलॉसफी का नहीं धर्मशास्त्र का हिस्सा है, ये बात इस किताब की बुनियाद है। और दूसरा, बाइबल के रोल पर। बाइबल का पहला काम हर स्थिति के लिए नियम बताना नहीं है बल्कि हमें एक ऐसी कहानी में डुबोना है जो हमारे चरित्र और नैतिकता को गढ़ती है, हमें मसीह के अनुयायियों के तौर पर ईमानदारी से जीने के लिए तैयार करती है, ये बाइबल को नियमों के बोझ से आजाद करता है।
और तीसरा,
समुदाय के महत्व पर था, है ना?
बिल्कुल।
हम अकेले अच्छा बनना नहीं सीख सकते, हम चर्च में यानी उस समुदाय में अच्छा बनना सीखते हैं जहां विश्वास, आशा और प्रेम जैसे गुण पूजा, प्रार्थना और संस्कारों के जरिए हकीकत बनते हैं। ये दिखाता है कि नैतिकता कितनी ज्यादा सामाजिक चीज है।
ये विचार सुनने में तो बहुत गहरे लगते हैं, लेकिन अब असली सवाल, कोई आम इंसान इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? ये सिर्फ अकेडमिक बातें तो नहीं रह जाती?
नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हें व्यवहारिक बनाया जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव तो शायद सोच में ही आ सकता है। हम अक्सर पूछते हैं क्या ये नियम के खिलाफ है।
हाँ,
इसकी जगह हम पूछना शुरू कर सकते हैं, इस काम को करने से मैं कैसा इंसान बनूंगी, क्या ये मुझे ज्यादा धीरज वाला, न्याय करने वाला या प्यार करने वाला बनाएगा? ये फोकस को बाहरी नियम से हटाकर अंदरूनी चरित्र पर ले आता है।
ये तो सोचने का तरीका ही बदल देगा। और चर्च या समुदाय की भूमिका?
उसे सिर्फ रविवार की रस्म ना समझकर नैतिक विकास की मुख्य जगह मानना। इससे समुदाय में गहरी भागीदारी, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव बढ़ सकता है। और जब कोई नैतिक उलझन आए तो कई तरह से सोच सकते हैं। बाइबल की बड़ी कहानी क्या कहती है, चर्च की परंपरा क्या सिखाती है, एक विश्वासी, आशावान, प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? मेरे फैसले का मेरे समुदाय पर क्या असर होगा?
इसका असर हमारे सामाजिक और राजनीतिक नजरिए पे भी पड़ सकता है।
जरूर, ये हमें किसी भी राजनीतिक विचारधारा में आंख मूंद कर बह जाने से रोक सकता है। हम नीतियों को, नेताओं को ईश्वर के राज्य के मूल्यों, शांति, गरीबों के लिए न्याय, मेल मिलाप की कसौटी पर परख सकते हैं। चर्च का मुख्य राजनीतिक काम शायद दुनिया पर कब्जा करना नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक अलग, शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय समुदाय का नमूना पेश करना है। यही नजरिया हमें बायो एथिक्स, बिजनेस के फैसलों, पर्यावरण की देखभाल, यहां तक कि शादी और परिवार जैसे मुद्दों को भी एक गहरी धार्मिक रोशनी में देखने में मदद कर सकता है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे, कहूँ तो, ताजगी भरी बात निकली वो ये है कि ईसाई नैतिकता को सिर्फ नियमों के बोझ की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये ईश्वर के जीवन में शामिल होने का एक रोमांचक और बदलने वाला सफर है। ये विचार काफी आजाद करने वाला लगता है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह रही कि नैतिकता कितनी गहराई से धर्मशास्त्र से जुड़ी है और इसे जीने के लिए समुदाय कितना जरूरी है। ये आज के व्यक्तिवादी माहौल के लिए एक बहुत शक्तिशाली और जरूरी संदेश है। लॉन्ग हमें याद दिलाते हैं कि ईसाई नैतिकता सिर्फ दिमागी तौर पर मजबूत ही नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर आजाद करने वाली भी हो सकती है।
ये हमें सिर्फ सही काम करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है।
हाँ, बिल्कुल। और शायद यही सवाल हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। हम जो भी करते हैं, उससे हम कैसे इंसान बन रहे हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।